राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 30 जुलाई 1992 प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री राम द्वार मथानिया में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। 12वें से 18वें तक अध्याय कहे गए। अब विचार करते हैं 6वें अध्याय से 11वें अध्याय तक, ये विषय बताऊं 6वें अध्याय से। ये हो जाएगा फिर मौका मिलेगा तो 1वें अध्याय से कह देंगे। 5 अध्याय रहते हैं। 6वां अध्याय ज्ञान योग प्रधान का है। जैसे भागवत में कहा है योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, मैंने 3 योग कहे हैं, कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग। उसमें एक ध्यान योग और है। तो ध्यान योग सगुण भगवान का भी होता है और निर्गुण निराकार का भी होता है। ज्ञान दोनों में चलता है, दोनों की उपासना, उस उपासना में आंग्रह और प्रतीक उपासना मानी हुई है। भगवान के स्वरूप का ध्यान करके उसका पूजन करके चिंतन करना ये प्रतीक उपासना है, और अपने में ब्रह्म की उपासना कर किया जाए ये अहंग्रह उपासना है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है, परंतु गीता में कुछ और विलक्षण बात है, विचित्र बात है। ये 6वां अध्याय ध्यान योग का होने पर भी इसमें 9वें श्लोक तक ये निष्काम और मन कर्मयोग और ज्ञान योग की बात चली है। 5वें अध्याय के आरंभ में संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशयसि यस्य एतयोरेकं तन्मे पुरुषं निश्चितं। कर्मयोग और सांख्य योग दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इसमें भगवान ने कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया है, जो शास्त्रों में बहुत कम आता है। सब मैंने पढ़े, दार्शनिक पुस्तक भी पढ़ी है और भी मैंने पढ़ा है। हमारे अध्ययन के अनुसार कर्मयोग का इतना विशेष विलक्षण विवेचन भगवद गीता में जैसे आया है ऐसा एक जगह नहीं आया है। उपनिषदों में थोड़ा थोड़ा आता है। कर्मयोग का बहुत विलक्षण विषय है, उसका विवेचन आचार्यों ने भी बहुत कम किया है। कर्मयोग के विषय में अपने देशी दार्शनिकों का विवेचन किया है, उन्होंने वर्णन किया है और उन्होंने अध्ययन किया है, परंतु कर्मयोग का जो रहस्य है गहरा, मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं आदर करता हूँ। बहुत श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं, विलक्षण हुए हैं, परंतु कर्मयोग के विषय में इतना बढ़िया विवेचन नहीं हुआ है। तिलक महाराज कर्मयोग मानते हैं, वो निष्काम कर्म सिद्ध पुरुषों के द्वारा होता है, मुख्य बात उनकी ये है। और भगवत गीता में कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों साधकों के लिए है, सिद्ध के लिए कोई वर्णन नहीं है। ये बड़ा मतभेद ये है। एक बात कहने में संकोच होता है, पर याद आ गई, आज से 50-55 वर्ष पहले मैंने देखी थी पुस्तकें और गीता के ऊपर टीकाएं देखी है, बहुत अच्छी अच्छी टीका है, विचित्र विचित्र टीका है, जिसमें मधुसूदन जी का मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी। और उनके अनुसार ये भाव प्रकाश टीका है, श्लोकबद्ध है टीका, सबका सब श्लोक 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 श्लोक, एक एक श्लोक 30-35 श्लोक, इतने इतने श्लोक है, कई कई 10-15-20 श्लोक एक श्लोक पर, बड़ी सरल संस्कृत है, श्लोकबद्ध है। वो पुस्तक मांगी थी मैंने और वो पढ़ी है, तो ऐसा मन लगा कि बस उस श्लोक गीता को पारी से अंत तक ठीक पढ़ ही गया, रात दिन लग करके ठीक तरह से गीता की शौक रही, रुचि रही है। तो ऐसी गीता मैंने पढ़ी है, टीकाएं कई पढ़ी है, संस्कृत की कई टीकाएं पढ़ी है, जिसमें व्याकरण का विषय नीलकंठ जो कि नीलकंठ टीका है भागवत पर, महाभारत पर, महाभारत नीलकंठ टीका है, नीलकंठ एक पंडित नहीं कि वो भारत पर टीको, तो बहुत नामी पंडित था, लाख लोगों पर टीका लिखी संस्कृत में, कोई मामूली पंडित नहीं थे उनके। और मधुसूदनाचार्य की टीका है गूढ़ार्थ दीपिका गीता पर, इन लोगों ने बहुत गहरा विचार किया है और व्याकरण का विषय बड़ा सुंदर खोला है, जहां जहां आया है व्याकरण का विषय खोला है। ऐसे एक भाष्योत्कर्ष दीपिका है धनपति सूर्य की, उसमें भी बहुत विलक्षणता से बातें खोली है। उनका एक ही सिद्धांत है, जहां गीता पर शांकर भाष्य है उस भाष्य से विरुद्ध कोई बात खंडन करना, शंकरानंद का खंडन है, मधुसूदन का खंडन है, भाव प्रकाश का, कई सिद्धांतकंठी का खंडन किया उन्होंने, भाष्य को ठीक है खंडन है, ऐसे उनकी विद्वत्तापूर्ण टीका अच्छी है, वो भी मैंने देखी, ऐसी कई टीकाएं देखी है। वो गीता पे विचार किया है, पुरानी बात है, मेरे मन में आई क्या करूं, तिलक महाराज अभी नहीं है, उनका शरीर नहीं है, शरीर होता तो मैं जाता और मिलता, विचार करता गीता पर, गीता पर लिखने वाले पुरुष उनकी मेरे आदर बुद्धि होती है, पूज्य बुद्धि होती है, उनसे मिलने का मन करता है, उनसे मिले गीता पर बात करें, ऐसी बहुत उत्कंठा अभिलाषा रही, परंतु क्या करें, ऐसा कोई गीता पर गहरा अध्ययन करने वाले इसने मिले नहीं, अभी तो कितना विचार हुआ मेरे मिले नहीं। टीकाओं में भी बहुत सी टीकाएं देखी, इतना गहरा विचार करने वाले मिले नहीं। मेरे विचार में जब आती थी तो शिशेर जी जयदयाल जी के भाव मेरे को अच्छे मालूम देते थे, बहुत विचित्र मालूम देते थे भाव, तो मैं इनसे मिला नहीं था, गोविंद गांव से मिला हूँ 1989 में, 88-89 में, निब्बे में, 89-90 में मिला हूँ, इनसे पहले की बात है। तो बहुत सी बातें आती थी मन में, मनुष्य है उसके मन में कई उधर उधर होती है, उधर उधर हलचल होती है, कई तरह की बातें आती है, तो मेरे मन में आती थी गीता पर विचार हुए, तो गीता मूल ग्रंथ पर गहरा अध्ययन जिसका मैंने गोविंद गजी का देखा, ऐसा मेरे देखने में नहीं आया, मैं ये ठेका नहीं लेता हूँ कि उनका बहुत ही बड़ा अध्ययन था ही मेरे पर असर पड़ा, वो कहता हूँ, उनकी बात मैं नहीं कहता हूँ। कि गीता में बहुत गहरे उतरते हैं। मधुसूदनाचार्य को मैंने देखा बहुत गहरे उतरते हैं। भाष्यत कृष्ण दीपिका है और नीलकंठ ही है, इन पर देखा, इनसे भी बहुत विचित्र गीता ग्रंथ पर एक विद्वत्ता के जोर से विवेचन कर दे और एक गहरा अनुभव करे, उसे विचार करे, गहरा उतरे, ये बात आप क्षमा करेंगे गोविंदिका जी की। देखी मैंने इनकी टीका तत्ववेद में पीछे लिखी गई, ये तो बहुत बाद में लिखी गई, मैं भी साथ चला गया था न्यासी में, वर्षों साथ में रहा, इसके बाद गीता के तत्ववेद में लिखी गई थी। उसकी आप सम्मत देख से तो कह रहे पहले तत्वांग छपा था, किस वर्ष का था याद नहीं हमें, तो वो छपा था, उसके बाद में गीता रूप से छपी, उसमें मैं साथ में था गोविंदिका जी के साथ, तो गीता पर बहुत गहरा अध्ययन था। परंतु अब मैं देखता हूँ विचार करके तो गीता कोई बहुत ही विलक्षण मार्ग देती है, बड़ी ही अलौकिक मालूम देती है, कितना गहरा इसमें विवेचन है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती, इतनी गहरी बातें, बिल्कुल गहरी बातें, किसी टीका में ऐसी बातें नहीं मिली है जैसी मूल में मिलती, जितनी विचित्र बनती। तो अब वो छठा अध्याय कहता हूं मैं, छठा अध्याय में ध्यान योग का वर्णन है।
कर्मयोग के विषय में आप बताना चाहते थे,
कर्मयोग के विषय में
कर्मयोग का आचार्य मानता हूँ सेठ
जी, कर्म का आचार्य मानता हूँ, कर्मयोग का आचार्य मैं सेठ जी को मानता हूँ। यद्यपि तिलक महाराज ने कर्मयोग रहस्य लिखा है, कर्मयोग पर बहुत कुछ लिखा है, पर कर्मयोग में गहरे उतरे हुए अनुभव करने वाले कोई नहीं मिला मेरे को सिवाय सेठ जी के। श्री जयदयाल जी गोविंद का जितने कर्मयोग में गहरे उतरे हैं, इतना गहरा उतरने वाला कोई टीकाकार मेरे देखने में आया नहीं है। आप लोगों को देखने में आवे तो मेरे को बताओ, मैं इस विषय में रुचि रखता हूँ, सुनने की इच्छा है, कोई सुना वैसे सुनू। तो तिलक महाराज ने सिद्ध पुरुष का कर्मयोग लिखा है, अरहवासम यद सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योग ही गम्य थे, और सांख योग पृथक वाला प्रवदंती ने पंडित एक मत्यासित सम्यक उपयोग बिंद थे फलम। तो साधन का नाम कर्मयोग और सांख्य योग है, सांख योग और कर्मयोग दोनों साधन का नाम है, इन दोनों के द्वारा तत्व की प्राप्ति एक होती है, ऐसा पांचवे अध्याय के चौथे और पांचवें श्लोकों में भगवान ने विशेष वर्णन किया है। टीकाकारों ने कई खेचातानी की है कोस रहे की, तो मेरे शेर जी से नहीं मिला तब तो मुझे विचार होता था कि ये दार्शनिक पंडित अपनी अपनी खेचातानी करते हैं और अपनी अपनी बात इस गीता पर लाना चाहते हैं, ऐसा भाव था। शेर जी से मिला, गीता जी की बातें सुने, तो मेरे ये विचार बदला कि ऐसे तुम करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो चिड़ गए। उसके बाद में मैंने कहना छोड़ दिया कि लालू शेर वालों को नहीं कहना। हाँ, तो वो लालू शेर वालों को कहने में यूं बात होती है कि मैं कुछ कहता हूँ तो वे समझते हैं कि इस विषय को हम ज्यादा समझते हो तुम, तो मैंने कहना छोड़ दिया। मेरे मन में थे ये ऐसा कर दे तो बहुत अच्छा हो जाए, यूं कर दे तो बहुत अच्छा हो जाए, पर वो एक आदमी चिढ़ गया, उसके बाद छोड़ दिया, अब ये कहना ही नहीं अपने, चाहे जो को अपने बोलते रहेंगे, सुन तो सुने नहीं, सुनो सुनेंगे, जब इसमें कहता नहीं हूँ, कहता हूँ, कहता रहता हूँ बस, कभी लड़ बंद हो जाए तो कहता हूँ, शुरू हो तो कहता हूँ, बढ़िया हो तो कहता हूँ, घटिया तो कहता रहता हूँ, हमारा काम कहने का है, सुने न सुने हम क्या करें, हमारे हाथ की बात नहीं। अबार महाराज ने संकेत किया तब कह दिया इतना। तो पहला प्रकरण इसमें है चार का जो योगागुरु की बात है, योग सरसा। हाँ, तो पांचवें अध्याय में जो अर्जुन ने प्रश्न किया उस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने पांचवा अध्याय कहा, तो छठा अध्याय के नौवें श्लोक तक बात वही गूंजती रही जो पांचवा अध्याय में पहला प्रश्न है। उस प्रश्न के ऊपर ही कर्मयोग और ज्ञान योग की बात नौवें श्लोक तक चली है। तो नौवें श्लोक पहले योगारूढ़ के लक्षण बताए हैं और उसमें कर्मयोग का कर्मयोग की विशेष महिमा कही है, ये बात है ये नौवें श्लोक तक। दसवें श्लोक से आत्म उद्धार के लिए के ध्यान योग का वर्णन है, ये मधुसूदनाचार्य से त्रयोविंशत्या श्लोक ही त्रयोविंशत्या श्लोक लिखा वर्णन, मानो 23 श्लोक में ध्यान योग का वर्णन है। तो ये जी 32 तक ये 32 तक बताया,
23 32
हाँ, तो ये 32 तक है। उसमें थोड़ा सा हमारे विषय में मत भेद है, पहले सगुण का विषय है, साकार का विषय है, निराकार विषय है, फिर निर्गुण निराकार का विषय है, 25 से लेकर घड़ी, ये इसमें भेद है थोड़ा 32वें तक। 32वें से 33, 34, 35, 36 श्लोकों में मन का विषय है, मन निग्रह हो तो ठीक होता है। इस विषय में अर्जुन ने पूछा, भगवान ने उत्तर दिया है। लोगों में मैं बात करता हूँ तो जगह जगह ये बात आती है कि मन ठीक होने से ठीक होता है, मन ठीक नहीं है तो क्या हुआ। बात ठीक है, बड़ी आदरणीय बात है, परंतु गीता ने मन पर इतना जोर नहीं दिया है। दो ही तो अर्जुन के श्लोक है 33-34, और दो ही श्लोकों में उत्तर दिया 35-36। मन के ऊपर ज्यादा भगवान नहीं बोले, इतने बोले। अभ्यास में कौन थे वैराग्य से क्रिया से, बस मूल बात हुई अभ्यास वैराग्य अभ्याम कर निरोधक योग दर्शन माया है, वो भगवान ने कही। तो मन के ऊपर बहुत थोड़े बोल रहे। इसके बाद योग भ्रष्ट की गति का वर्णन है कि योग से चरित मना हो जाए तो उसकी क्या दशा होती है, वो 47 विषय है। तो ये इसका प्रधान विषय है, ये ध्यान कर लेना चाहिए। अब बताते हैं पहले श्लोक है उसमें अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति स संन्यासी योगी से न निर्गने साक्रिय। सांख्य योग से बढ़कर कर्म योग को कहा है, एक ये नई बात है गीता ने कहा है। वेदांत के ग्रंथ, अद्वैत सिद्धांत के ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, उनमें कर्मयोग को बहुत मामूली बताया है। एक अंतःकरण का मल दोष दूर करने में कर्मयोग काम आता है, विक्षेप दोष दूर करने में उपासना काम आती है, आवरण दोष दूर करने में ज्ञान काम आता है। ऐसा अद्वैत सिद्धांत के मूल प्रवक्ता जो श्री शंकराचार्य महाराज है उनकी ये मान्यता, उनके अनुसार ही उनके ग्रंथ ऑफ निर्देशन है। ख्याल किया ना, मानो अंतःकरण में 3 दोष है, मल विक्षेप और आवरण, उनको दूर करने के लिए, मल दोष दूर करने के लिए कर्मयोग, विक्षेप दोष दूर की उपासना और ज्ञान तत्व प्राप्त करने के लिए सांख्य योग ज्ञान योग, ऐसा निर्देशन आता है। गीता ऐसा नहीं मानती, गीता मन पर इतना जोर नहीं देती, अंतःकरण की शुद्धि पर जोर नहीं देती। गीता में एक विलक्षण बात है, अलौकिक बात है। गीता अध्ययन करने वाले भाई बहन इस पर विचार करें, मैं बात करता हूं उस पर विचार करें। इसका कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष मत है गीता का। कर्ण निरपेक्ष मन बुद्धि इंद्रिया आदि की अपेक्षा नहीं है, ज्ञान योग में अंतःकरण की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक दिन जयपुर में जहाँ अच्छे अच्छे विद्वान भी आते थे, मैंने कह दिया अंतःकरण की शुद्धि की इतनी आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, व्याख्यान में कह दिया। तो महाराज बोले कि अब कल तुम्हारे सामने प्रश्न आएंगे, लोगों में प्रसिद्धि है कि अंतःकरण की शुद्धि होने से ही काम होता है। अगर ज्ञान नहीं होता है, तत्व नहीं होता है, तो अंतःकरण की अशुद्धि है। ये बड़ा डिंडिम घोष है, डिंडिम घोष मनुष्य जगत में, संसार में एक प्रसिद्ध बात है। मैंने ये कह दिया था वहां, परंतु कोई प्रश्न आया नहीं। अभी मैं कहता हूं कि अंतःकरण शुद्धि की आवश्यकता है। मेरे कहने का उल्टा अर्थ, ऊंधा अर्थ कोई न ले, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मन को शुद्ध करना, मन को परमात्मा लगाना बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। पर तत्व है उसमें कर्ण पहुंचता ही नहीं। परमात्मा तत्व का जो बोध है वो चाहे सगुण का हो चाहे निर्गुण का हो, कर्ण नहीं पहुंचता हो। कर्ण अशुद्ध शुद्ध कुछ भी हो, त्याज्य है, इस वास्ते वो पहुंचता नहीं है। ये बात कहता हूँ। जिन भाइयों को जो अध्ययन हो तो एकांत मिले, मेरे से बात करें। अपने एकांत बात करेंगे, सभा में ठीक नहीं है, खूब उच्चार से बात करें। तो मन पर इतना जोर दे दिया, और मन के विषय में दो श्लोक अर्जुन ने पूछे, दो ही श्लोक भगवान ने कहे।
गीता में
कर्ण निरपेक्ष की है, परंतु ये ध्यान योग कर्ण सापेक्ष है। अभी जो ध्यान योग का वर्णन होता था ये कर्ण सापेक्ष है। कर्ण निरपेक्ष कर्ण सापेक्ष क्या है थोड़ा सा खुलासा करते हरी सभी तरह। कर्ण निरपेक्ष कर्ण सापेक्ष क्या होता है? मानो मन बुद्धि इंद्रियों को लगा करके परमात्मा की प्राप्ति करना, ये कर्ण सापेक्ष है। और मन बुद्धि से अलग हो जाना, ये है कर्ण निरपेक्ष। तो गीता का विवेचन कर्ण निरपेक्ष है। अब निरपेक्ष है वो अंतर शुद्ध हो जाए, अशुद्ध हो त्याग करना है, मारो कूड़ा कचरा लेकर घर का निकालना है, उसे कितने तिनके हैं, कितनी रेती है, कितना कचरा है, कितने क्या जरूरत है, वो तो फेंक रहा है। इस वास्ते मन बुद्धि सब प्रकृति का है, और प्रकृति को बिल्कुल त्याग करना है प्रकृति का। अब उसमें शुद्ध शुद्ध क्या करना है? ये ज्ञान योग का सिद्धांत असली गीता का है। इसमें इतनी बात नहीं कि मन दूर करो, विषय दूर करो, आवरण दूर करो, ये है। तो अब जो प्रकरण चलता है छठे अध्याय का, ये कर्ण सापेक्ष है। जो वेदांत कहती है ना, मल विक्षेप आवरण दूर दूर करना, तो अंतःकरण सापेक्ष मानो वृत्तियों के सापेक्ष है। तो ज्ञान योग गीता का कर्ण सापेक्ष है, ज्ञान योग और कर्म योग कर्ण निरपेक्ष है। जिसमें कर्म योग तो बिल्कुल कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण की तो केवल मन बुद्धि इंद्रियों की केवल सेवा में वृत्ति लगा देना है, आप ही शुद्ध हो जाएगा। आप साफ इसको शुद्ध करने की मेहनत की जरूरत नहीं है, ऐसा विशेष विवेचन है। तो ये बात है। अब चले पहले श्लोक में भगवान ने कहा, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। ये क्यों कहा? सन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं संससी, पांचवा अध्याय का ये प्रश्न था। उसी पर नौ श्लोकों तक उसी पर चलता है, पांचवा अध्याय का विषय ही चल रहा है। इस बार सन्यासी की योगी से कर्म फल का आश्रय न कर रही सर, वही सन्यासी है, वही योगी है, वही सांख्य योगी, वही कर्म योगी है, कर्तव्य कर्म करता है। न निर्ग्रहण सक्रिय, अग्नि के त्यागने से सन्यासी नहीं है। अग्नि स्त्री का स्पर्श न करना सांख्य सन्यासियों के लिए वर्जित बताया है, बिल्कुल छुए ही नहीं, न आग को छुए। और यहां तक आया है दत्तात्रेय जी महाराज ने जो 24 गुरु बताया, उसमें साफ लिखा है कि स्त्री का हार दाढ़ी लकड़ी की बनाई हुई स्त्री को पैर से भी स्पर्श न करे, ये दत्तात्रेय ने कहा। तो सन्यासी के लिए त्याग बताया स्त्री का और अग्नि का, अग्नि से छुए। तो भगवान कहते हैं अग्नि ने छूना करना खास बात नहीं है। इसका अर्थ ऐसा मत समझना कि सन्यासी भले अग्नि सुअर भले विद्या रखो भले सोना रखो, मैं कहता हूँ ये नहीं कहता हूँ। जो ऋषियों ने लिखा है वही सच्ची बात है, ठीक मानता हूँ। परंतु कल्याण के लिए क्या चीज है वास्तव में, इस बात पर गीता ने जैसा जोर दिया है किसी बात पर नहीं है। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अत्यंत भेदाभेद, ये पांच खास मत है। इन मतों पर गीता विवाद नहीं करती। कोई मत तुम्हारी मर्जी है उस मतों को विवाद नहीं करती, परंतु इनकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता वास्तव में अपने कल्याण की है। जीव का उद्धार कैसे हो, इसके ऊपर गीता का खूब जोर है। जीव का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। द्वैतवाद अद्वैतवाद से ये झगड़ा कल्याण हो कोई, ये महामोह, द्वैताद्वैत महामोह, ये तुम्हारा ध्वंस नहीं, तो ये बड़ा मोह है। एक मोह तो है संसार का, एक मोह है यह शास्त्र का, जिसमें आदमी उलझ जाता है। ये नहीं, गीता तो सीधी भाग चलती, किसी के पक्ष बात नहीं। अब उसमें अवच्छेदवाद है, आभासवाद है, प्रसंगवाद है, सृष्टि दृष्टिवाद है, कई बात है। इसमें वे मेरे थोड़े देखे हुए हैं। हमारे गुरु जी महाराज के कुछ तंचु प्रवेश ऐसा देखा हुआ है। तो ऐसी बात है, विलक्षण, बहुत विलक्षण बात है। गीता केवल जीव का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, किस एक पर है, कोई आग्रह नहीं। द्वैत का ना अद्वैत का कोई आग्रह नहीं। अगर देखा जाए तो कर्मयोग की महिमा बहुत विशेष बताई। सांख्य योग से कर्मयोग की महिमा और कर्मयोग से भक्ति योग की महिमा ज्यादा आती है। तत्व स्वरूप देखने से ऐसा मालूम होता है। पर भगवान के कर्मयोग की प्रशंसा की अपन भक्ति योग को कमजोर नहीं मानते हैं। ऐसे ज्ञान योग की प्रशंसा अपन भक्ति योग को कर्मयोग को कमजोर नहीं मानते हैं। तीनों बरोबर है। जैसे भागवत में कहा एकादश स्कंध के 20वें अध्याय में योगास्त्र योग, तीन योग कहें, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों स्वतंत्र परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग है। ये गीता का अध्याय है। कर्मयोग स्वतंत्र परमात्मा तत्व की प्राप्ति का मार्ग है, भक्ति योग स्वतंत्र परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है, और सांख्य योग स्वतंत्र भक्ति में, ज्ञान योग परमात्मा तत्व की प्राप्ति का मार्ग है। ऐसे अलग अलग स्वतंत्र पराधीन नहीं कि पहले कर्मयोग करो, फिर भक्ति योग करो, फिर ज्ञान योग करो, ऐसा करे तो मना ही नहीं गीता की। इसका वर्णन भी आता, इसका अनुमोदन भी गीता ने किया है, परंतु ये आग्रह नहीं गीता को, कोई भी आग्रह नहीं। तो वही योगी है, वही सन्यासी है, तो सन्यासी योग सांख्य योगों को पृथक बाला प्रवचन थी उसे बताया। एक मत्यास बिंद से फलम वही है। यह संन्यास मिति प्राहु, जिसको संन्यास कहते हैं, योगंतम विद्धि पांडव पांडव नंदन, उसी तुम योग समझो। जो सांख्य योग का है वही कर्मयोग है। नहीं असन्यास संकल्प योग ही बहुत ही कष्ट में, वही कर्मयोग है, कर्मयोग है वही सांख्य योग है। मानो फल दोनों का एक होता है, फल की दृष्टि में एक है। ऐसे साधनों की दृष्टि में दो है। ये तीसरे अध्याय के तीसरा श्लोक, तीजा अध्याय का तीजा श्लोक, लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयान ज्ञान योगे न सांख्याना कर्म योगे न योगिना। मार्ग दोनों भिन्न है, परंतु दोनों के प्रापणी वस्तु एक है, तो तत्व एक ही है। इस बात वही सन्यासी है, वही योगी है। नहीं असन्यस्त संकल्पों योगी बहुत ही कष्ट न, संकल्पों का त्याग बिना कोई योगी नहीं होता, न ध्यान योगी होता है, न कर्म योगी होता है, न भक्ति योगी होता है। संकल्पों का त्याग सब करना पड़ता है, इसमें सब एक हो जाते हैं। परंतु एक बात कहते हैं भगवान, आयुषे योग में जो आगुण हम चाहते, योग गीता का योग है, योग खास योग शास्त्र से नाम लिया, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, श्री कृष्ण संबंध योग शास्त्र आता है। तो योग का वर्णन गीता में विशेषता से है। वो कर्म के साथ में कर्मयोग हो जाता है, भक्ति के साथ में भक्ति योग हो जाता है, ज्ञान के साथ में ज्ञान योग हो जाता है। योग पर खास दृष्टि है भगवान की। योग की परिभाषा दो करिए गीता में, आरंभ से अंत तक दो करिए। कोई तीन मानते हैं, मैं उसे तीन नहीं मानता, दो ही मानता हूँ। जिन भाइयों को विचार हो मिले बात कर ले, मैं अभिमान से नहीं कहता हूँ, मैं तो बड़ी नम्रता से मान लूंगा और जान लूंगा, कोई जता के मैं जानने के लिए तैयार हूँ, स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ, इसे खूब बता रहा कोई। तो कर्मयोग तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये छठे अध्याय के 23वें में योग की परिभाषा करी है और एक दूसरे अध्याय में बताया है समत्वम योग उचित 48वां श्लोक, समता का नाम योग है। तो समता का नाम योग है और योग नाम दुख के संयोग का वियोग का नाम योग है। ये दो योग की परिभाषा की है, दोनों ही एक आदरणीय है, बड़ी बढ़िया है। योग कर्म सुख औसलम, इसको कोई योग की परिभाषा मानते हैं, मैं परिभाषा नहीं मानता हूँ। मेरे को समझा दे कोई तो मैं मानने को तैयार हूँ, कोई बात नहीं, परंतु मेरे समझ में नहीं आ रही है वो क्या है। योग कर्म सुख कौशलम योगा, कर्म में जो कुशलता है उसका नाम योग है। तो कुशलता का नाम योग नहीं है, कर्म सुख योगा कौशलम, अर्थ ऐसा करते हैं कर्म सुख कौशलम योगा, कर्म में कुशलता नाम योग है। आर्य समाज ने यही किया है, अच्छे अच्छे पंडित हमारे संप्रदाय में किया है, माने ज्ञान की संप्रदाय में ऐसा किया है। शंकराचार्य नहीं करते, शंकराचार्य यही अर्थ करते हैं योग कर्मसु कर्मसु योग है ये कौशलम, कर्म में योग है ये कुशल, और कर्म में कोई तत्व नहीं है, कर्म में जो योग है समता है यही योग है, ये अर्थ किया शंकराचार्य मान रहे, वही मैं मानता हूँ। जैसे शंकराचार्य मानते वैसी हमारी मान्यता है। हमने गीता पर लिखा है तो दर्पण लिखा है, गीता दर्पण, गीता की टीका लिखी गई, इसके बाद लिखने लगे कि भूमिका लिखे हम गीता की, वो भूमिका लिखते लिखने के मन में आ गई तो दर्पण लिख दिया, दर्पण हो गया गीता दर्पण। 108 विषय है उसमें, अलग 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 उसमें बड़े संक्षेप में लिखा थोड़ा थोड़ा, ये गीता संजीवनी भी इतनी बड़ी हो जाए थी, हो जाएगी इतनी मेरी उम्र नहीं थी, पर दर्पण लिखेगा तो और लिखने लगा, तो बहुत संकल्प किया बहुत थोड़ी लिखो थोड़ी लिखो, पोथा बड़ा ना हो जाए, ऐसे दर्पण लिखा। उस दर्पण में योग के 3 अर्थ किए हमने, महात्म्यों गीता मूल में योग शास्त्र कहा पर योग के 3 अर्थ है गीता के अनुसार, व्याकरण के अनुसार मैंने वो लिखा है, विभीषण किया है दर्पण में। एक योग है समता का नाम योग है, और ये ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग योग है, सब में समता आ जाए दुख कृष्ण योग योग उसका नाम योग है। एक योग का अर्थ किया गया है, एक योग का अर्थ किया गया है युद्ध समाधव जो छठा अध्याय है, इसमें मन लगाया जाए परमात्मा में, जैसे पतंजलि महाराज ने कहा योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त के वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। गीता उसके आदर करती है पर वो सिद्धांत नहीं गीता का, वहां तो समत्वम योग उचित है, ये सिद्धांत है गीता का सबसे ऊपर, समत्वम योग उचित है ये खास योग है। तो एक चित्त वृत्तियों का निरोध करने का नाम योग है और एक समता का नाम योग है, एक युद्ध सामर्थ्य में है भगवान का प्रभाव, पश्चिमे योग में इसमें मेरा योग देख मेरा प्रभाव देख, वो प्रभाव बताए। तो योग के अर्थ 3 किए हैं, 3 व्याकरण में युद्ध धातु आवे है, युद्ध योग युद्ध समाधव युद्ध संयम ने, इनसे 3 का अलग अलग विषय करके और दर्पण में इसका विवेचन किया है, कोई देखना चाहे तो वहां देख ले। भगवान कहते हैं आरूर शोर मुझे योगम, अब जो योग में आरूर होना चाहता है उसके लिए कर्म आवश्यक है। ये पहले न कर्म आरम्भ पुरुषों से 30 अध्याय के 34 श्लोक में कर्मों के आरंभ के बिना योग की प्राप्ति नहीं होती और कर्मों के त्याग से भी सांख्य की प्राप्ति नहीं होती, ये 34 अध्याय में पहले कहा आया है 30 अध्याय के 34 श्लोक में। तो यह कहते हैं योग में आरूढ़ होने से कर्म कारण है, तो कर्म योग, कर्म के 2 भाग है, एक कर्म करना और एक योग होना, मानो कर्म ये पूर्वार्ध है योग उत्तरार्ध है, कर्मयोग में दो भाग है, पूर्वानुतरा से। और वो योगारूढ़ हो जाए तो योगारूढ़ के जो शांति है, मन में शांति मिलती है योगारूढ़ से, निष्काम होने से, वो योगारूढ़ पर वो शांति परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। अब वो कैसा होता है योगारूढ़ होता है, वो क्या है कि यदा ही इंद्रिया से न कर्म सुन सज्जते, न तो इंद्रियों के भोगों में शब्द स्पर्श रूप संधि में आ सकती हो, न कर्म में आ सकती हो, संपूर्ण संकल्पों का त्यागी है, वो योगारूढ़ कहलाता है, योगारूढ़ हो गया। अब योगारूढ़ जो शांति मिलती है योग से, योगा शांति है, वो शांति से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये बात चार में योगारूढ़ की बात बताई। अब है दस तक श्लोक है, उनमें है पहले प्रेरणा है दो श्लोकों में, मानो इसमें अभ्यास करो, और फिर लक्षण है, तो पांच और छह ये हो जाएंगे, और सात आठ नौ में लक्षण हो जाएंगे, तीन श्लोक भी है, इनमें इतना ज्यादा भेद है। उद्धरेगात्मनात्मा नाम, ये दो श्लोक कहा है कि तुम अपना आत्मा से अपना आप, अपने आप से अपना आप उद्धार करो, अपने आप का पतन मत करो, आत्म ही आत्मनो बंधु, जो अपना उद्धार करता है वो ही अपना भाई बंधु है, गुरु है, शेष है। और बंधु आत्म ही रिपुर आत्मा, जो अपना ही रिपु है, जो अपना उद्धार नहीं करता वो आप ही अपना कैदी है। एक बहुत विलक्षण बात गीता में है, सब जगह गुरु की महिमा है, और गीता में भी गुरु की उपासना बताई है, गुरु की महिमा करी है, परंतु गीता में एक बहुत विलक्षण बात बताई है, जैसे अपने आंखों से देखो और अपने काम अपने पैरों से चलो। गुरु होता है गुकारस्त अंधकारस और गुकारस्त निरोध के, अंधकार को मिटा दे, उसका नाम गुरु है, तो मार्गदर्शन कर दे, ये गुरु का काम है। गीता वो मानती है, गुरु की विशेष महिमा मानती है, और वो मानती है विशेष करके ज्ञान योग में, जिसमें ज्ञान बताया है ना, तेरहवें अध्याय में भगवान ने अमानित्व में लेकर के तत्व ज्ञान आत्मदर्शन 20 साधन बताए, 20 साधनों में आचार्य उपासना बताया, गुरु की उपासना। तो ज्ञान मार्ग में गुरु की विशेष आवश्यकता है, ये किसान ने कहा, और ध्यान योग में, कर्म योग में, भक्ति योग में इसी बात नहीं बताई है। कारण क्या है कि ज्ञान योग में थोड़ा सीख करके और ब्रह्म हो जाता है, मैं तो ब्रह्म हो गया बस, ये भूल बहुत जबरदस्त होती है ज्ञान मार्ग में। इस वास्ते वहाँ आचार्य उपासना कहा, तुम आचार्य के पास रहो, नहीं तो बाबा जी बन जाओगे, सिद्ध बन जाओगे और पतन होगा। इस वास्ते भगवान ने ज्ञान योग में आचार्य उपासना कहा, कहने का आशय ये हमें मालूम दिया। अब वो योगारूढ़ होता है, उसे उद्धार करे अपना, कि कौन बंधु है कौन रिपु है, बंधु आत्मा आत्मा से लेन आत्मे, अपने से अपने आप को जीत लिया, अपने आप इंद्रियों के मन में बस में नहीं हुआ है, इनको बस में किया वो तो अपना आप है मित्र, और जिसके मन और इंद्रियों बस में नहीं है, मन और इंद्रियों के बस में है, वो अपना आप ही अपना आप है शत्रु। तो मन बस में हो जाए, ठीक तरह से हो जाए, बस में हो जाए इंद्रियों मन, तो देखो इंद्रियों मन को बस में करने की बात गीता कह रही है। पहली मेरी बात सुन के लोग समझेंगे कि मन के ऊपर कोई परवाह नहीं है, ऐसे ही कल्याण हो जाएगा, वो बात भी मैं ही कहता हूँ। गीता खास कह रही है कि मन है वो अपना इंद्रिया है, मन है सही ही अपने बस में होना चाहिए, तब साधक चलेगा। तो इनके बस किए बिना ना ज्ञान होगा, ना कर्म योग होगा, ना भक्ति होगा, कोई सही नहीं होगा। योग जितात मना प्रशांत समाहित, जिसने शरीर को जीत लिया और प्रशांत मन को जीत लिया, उसके लिए परमात्मा समाहित्व प्राप्त है। मन इंद्रियां शरीर को जीत लिया है, वही अपना आप मित्र है, शीतोष्ण सुख दुख वो ही परमात्मा प्राप्त हो जाता है। शीतोष्ण सुख दुख में, मान अपमान में वो सम होते हैं, सिद्ध के लक्षण। ये सात आठ दो तीनों में सिद्ध के लक्षण बताते हैं, जो परमात्म तत्व को प्राप्त होंगे उन सिद्धों में ये लक्षण होता है। उस सिद्धांत में ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते से योगी समदोषात्म कांचन। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान और विज्ञान से, ज्ञान नाव शास्त्रीय और विज्ञान नाव अनुभव, इनसे जो तृप्तात्मा हो गया है और कूटस्थ निर्विकार है, विजेंद्रिय है, युक्त इत्युते योगी समलोष्टांग है, लोष्ट अश्म कांचन में समता है, वो योगी कहलाता है। फिर बताते हैं सुरन मित्रीन मध्य मंदिर साधु स्वीर पापे समुद्र विशेष ये वो समुद्र योग विशेष है, समत्वम योग उच्चते, ये समता पर गीता का जोर है। सुख दुख के समय कृपा लाभा लाभ दया दयु तथो युद्धा युद्ध नहीं, ये समता आ गई तो युद्ध करो कुछ नहीं। गीता भर में अगर सबसे श्रेष्ठ लक्षण है तो समता है, समता अगर आ गई तो फिर कही जाओ योगा भगवान ने सर्टिफिकेट दे दिया, अगर समता नहीं आई तो कितनी ज्ञान की भक्ति की योग की बात करो, अधूरा है। गीता की दृष्टि से गीता में समता ही मुख्य है। वो समता क्या है कि सूर्य मित्र हरि, सूर्य मित्र हरि उदासीन मध्य सुदेश बंधु साधु साधु पापेश समबुद्धि विशेष, श्रुत है बैरी है उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधु और पापी और धर्मात्मा, इनमें जिसकी समबुद्धि हो गई, मनु राग द्वेष नहीं है, हरिक शोक नहीं है, खराब अच्छा नहीं, एक परमात्मा परिपूर्ण है। पांच में पका है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है गवि हस्तिनी सुनिचे वो सोफा कैसे पंडित समदर्शी मा, तो समदर्शी होते मन सम परमात्म तत्व को देखते हैं। इसका लोग आज अर्थ करते हैं कि किसी के साथ खाओ पियो पंडित समदर्शी में, वो समदर्शी नहीं है संवर्ती है, संवर्ती जमराज का नाम है, संवर्ती परेशान खासकर जमराज है, इसमें संवर्ता कोई कर नहीं सकता। सुन बताओ विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गऊ हाथी कुत्ता और चंदा, बर्ताव अलग अलग होगा, अर्थाव बर्ताव अलग अलग करते हुए भी परमात्म तत्व एक है। इसमें जिसकी निष्ठा है उस समता का वर्णन पंडिता समदर्शी ने लिखा है, ऐसा नहीं पंडिता समवर्ती ना, सबके साथ समवर्ता हो गए, सबके साथ खाओ सबके साथ ब्याह करो सबसे एक हो जाओ बर्ता मिटा दो, ये बिल्कुल गीता का सिद्धांत नहीं है। देख लो तो पंडित समदर्शी ने वही बताए साधुषु पापेशु समबुद्धि, बुद्धि सम हो जाए, बुद्धि समय समदर्शी न समदर्शन समा सर्वेश भूतेषु समम पश्यति, जहां जहां सम आया है वहां सम का तात्पर्य परमात्म तत्व सब में परिपूर्ण एक समान है, यही अर्थ आया है। बर्ताव के विषय में गीता में कहीं भी नहीं है कि खाओ पियो सबके साथ में, बिल्कुल नहीं, ये बता दिया। ऐसा कर्म योग क्या एक प्रश्न हो गया। अब यहाँ से चलता है ध्यान योग का प्रकरण जो गीता का खास है, कर्म योग और सांख्य योग के विषय में अर्जुन का प्रश्न था पांचवें अध्याय के आरंभ में, उसका वर्णन यहाँ तक हो गया। अब योगी युंजीत सतम आत्मानम रहस्य था, एकांत देश में बैठ करके और अपना योग का अभ्यास करे एकाकी अकेला, और जिस चित्त आत्मा जिसके चित्र आत्मा सब बस में मन मन बुद्धि इंद्रिया जो बस में है, निराशी इच्छा कोई तरह की नहीं, किंतु मात्र विषय नहीं है, अपरिग्रह संग्रह नहीं है, भोग बुद्धि से कोई संग्रह उसका नहीं है, ऐसा शुद्ध देश है प्रदेश। आप क्या करें, सबसे पहले शुद्ध देश में आसन बिछावे, अपना आसन स्थिर बिछावे, ना ऊंचा हो ना नीचा हो, ऊंचा हो तो नींद आदि गिर जाएगा, नीचा हो तो विक्षेप करेगी, नातिशोत्तरम पहली कुश उसके मृगशाला उस पर कपड़ा, ऐसा बिछा दे। मृगशाला शुद्ध मिले तो बिछा दे, तो कोई जरूरत नहीं है, मृग कुशाकाश में बिछा दो, उसके ऊपर टाट बिछा दो, उस पर गर्म कपड़ा बिछा दो, तब से एकाग्र मन वहां एकाग्र मन को एकाग्र करके ये तो चित्तेंद्रिय चित्त के लिए और मन की क्रियाओं को बस में करके उपवेश उस पर बैठ करके और युंजात योगम आत्म विशुद्धि, केवल कल्याण के लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग का अभ्यास करे। कैसा है प्रशांत आत्मा विगत भी प्रशांत आत्मा जिसका भय रहित है, ब्रह्मचारी बस में स्थित है, मन संयम में मत्स्य है, मन को संयम करे, केवल मेरे परायण हो जाए, ये सगुण का ध्यान है यहाँ। ध्यान के 23 श्लोक बताए ना, उनमें सगुण का ध्यान बताया है। ऐसे वो मन को सेम कर मेरे पर बैठे। ये दूसरे अध्याय में भी कहा है, तानी सर्वाणी संयम युक्त आसीत मत पर वैसे यश्यंजानी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो यहाँ पर कहते युक्त आसीत मत पर सगुण भगवान का ध्यान बताए। युंजन एवं सदात्मान सदा ऐसा योग करता हुआ शांति निर्वाण परमा निर्वाण पर निर्वाण हो गया ब्रह्म की प्राप्ति हुआ मत संस्थान मेरे में सम्यक स्थिति वाली स्थिति को प्राप्त हो जाएगा सगुण की प्राप्ति। ये बात बताई। अब दो श्लोक बताते हैं 16 और 17 सबके काम के लिए ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग हठ योग धन योग राज योग मंत्र योग तंत्र योग अनाशक्ति योग श्लो जो जितने योग हो संपूर्ण योगों में आवश्यक दो श्लोक बताते हैं। नातस्त योग अधिक खाने वाला का योग सिद्ध नहीं होता, बिल्कुल भूखा रहने वाला श्लोक सिद्ध नहीं होता, अत्यंत जागने सोने वाला भी सिद्ध नहीं होता, अत्यंत जागने वाला भी सिद्ध नहीं होता। तो युक्त आहार विहार आहार विहार युक्त संयम पूर्वक कर्म में चेष्टा भी युक्त दृष्टि हो और सोना जागना भी ठीक हो उनको दुख दूर करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। किसी योग में रखो ध्यान योग में खास मुख्य युक्त आहार विहार से ये 17वां मुख्य है। इस बात से दो श्लोक बीच में कह दिए। अब फिर ध्यान का चलेगा। यदा विनियतम चित्तम आत्मनैव अवशिष्यते, जब नियत किया हुआ चित्त केवल आत्मा में स्थित रहता है और संपूर्ण कामना से निष्प्रय हो जाता है तब भगवान कहते युक्त योगी हो गया। ये सर्टिफिकेट है योगी का, युक्त इत्युते योगी युक्त इत्युते तथा। तो उस योगी क्या होता है, यहाँ पाचन तो योग दर्शन का बात है। एकाकी एक हो गए मन को लगावे, तो मन को लगावे तो कैसे लगावे, तो कहते हैं यथा दीपो निवास तुम निवास देश जनो पवन है ही नहीं, ऐसे देश में वायु ये दीपक वो लोग रहती है, थोड़ा भी पवन होते यू लो हल जाती है। आपने श्वास लिया तो भी वहां पर ये हो जाता सब, जैसे निवास देश है पर भवन बाहर का चलता नहीं है, ऐसे निवास देश में योगी जो योगी नो ये से योगी ना योगम आत्म न योगम युंजता योगी ना ये चित्र से उपमा सुनता, अपना योगाभ्यास करने वाले के चित्र की उपमा वो लोग की तरह रहे अड़िग रहे एक तरह ऐसे। यद उपनवते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, तो चित्त की अवस्था निरुद्ध बताई यहाँ, चित्त की अवस्था मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध 5 अवस्था होती है। निरुद्ध अवस्था आश्रय है, योग स्थिति निरोध निरोध में समाधि होती है, एकाग्रता में भी होती है और पहले मूड में क्षिप्त में नहीं होती, विक्षिप्त अधिकारी होता है, मूड अधिकारी नहीं होता, क्षिप्त भी अधिकारी नहीं होता योग का। पतंजलि दोष में पतंजलि योग दर्शन से चित्त वृत्ति का निरोध करना है, चित्त की वृत्तियां मूड होती है क्षिप्त होती है विक्षिप्त होती है एकाग्र होती है निरुद्ध 5 तरह की होती है। निरुद्ध आखिरी योग दर्शन का निरुद्ध आखिरी है, योग चित्त वृत्ति निरोध ये निरुद्ध आखिरी है, एकाग्र पहले है उनसे, उनसे पहले है जो लगे तो विक्षिप्त मूल रूक्षिप्त अधिकारी नहीं है, पतन योग दर्शन में रूक्षिप्त अधिकारी नहीं है योग के, गीता के अधिकारी है, जो चाहे भीतर में लालसा हो तो सब अधिकारी हो जाएंगे, भक्ति योग के ज्ञान योग के कर्म योग के सब अधिकारी। भगवत गीता कैसी है आप शंका हो तो पूछ लेना फिर बता देंगे। तो ऐसा हमारा चित्त होता है तो योग ऐसे उपनते आत्म उपराम हो जाता है निर्दुर योग सेवा ये त्रोपरम से और सेवा आत्मा आत्मा प्रसन्न आत्मदृष्टि अपने आप में अपने आप को देखता अपने स्वरूप में स्थित होकर अपने आप का ही अनुभव करता है। कब कि जब निवात देश में दीपक हो ऐसी की चित्त की वृत्ति हो जाती है तब अपने आप में अपने आप का ज्ञान होता है ये सिद्ध हो जाता है। वो क्या हो सुख में अत्यंत सुख होता है, वैसा सुख और किसी है नहीं। बुद्धि ग्राह्यम, बुद्धि केवल जागृत रहती है और अतीन्द्रिय इंद्रियों से अतीत है, वहाँ चलायमान नहीं होता, वहाँ फिर चलायमान वो नहीं होता। चलायमान किससे होता है कि जिससे अधिक लाभ दिखे तो चलायमान हो जाता है, दुख आग पड़े तो चलायमान हो जाता है। दोनों चलायमान एक वृत्ति बता दी 22 श्लोक में, जब लब्धवाचा परम लाभ मनते नाभि, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई लाभ होता है ऐसा मानता ही नहीं, और यशमिन स्थिति दुख है ना, गुरु वहां पहुंचता ही नहीं। तम पिता दुख संयोग वियोगम, इस योग में दुखों के संयोग का ही वियोग स्पर्श नहीं है, इसलिए योग का अभ्यास वैराग्य से करना चाहिए। आज हो गई ऐसा संकल्प प्रमाण का मान। अब 24 और 25 ये अचिंत ध्यान है, ब्रह्म परमात्मा का अचिंत ध्यान, जिसमें चिंतन में भी परमात्मा आते नहीं, ऐसा अचिंत ध्यान करने की बात बताते हैं। संकल्प से उत्पन्न होने कामना का अशुद्धता सर्वथा त्याग कर देना, मन से इंद्रिय ग्रहों को समूह एकाग्र करके और शनि शनि ऊपर भी संसार से ऊपर भी धीरे धीरे धृति धीरे बुद्धिया, ये मैंने बताया था बुद्धि धृति, ये हम कामना करते बुद्धि ऐसे करके और आत्मसंस्थ परमात्म सर्व मन संस्थम स्वा एक सच्चिदानंद घन ही है, इसमें स्थित करके फिर कुछ भी चिंतन न करे, न आत्मा का न परमात्मा का न संसार का किसी का चिंतन न करे, चुपचाप ले जाए तो चिंतन कुछ भी न करने से स्थिति होती है, मन नहीं पहुंचता वहां। तो ऐसी स्थिति न हो तो ऐसा न कर सके तो कहते ये तो निश्चित है, जहाँ जहाँ मन भागता है जिस जिस द्वार में जिस जिस विषय में वहाँ वहां से ला करके और आप परमात्मा में लगावे, ये अभ्यास बता दिया सत्य सही श्लोक में। फिर प्रशांत मन सम एकदम योगीदम सुखम उत्तम, ऐसा जो जिसका मन शांत हो गया उस योग को शांत रहो, ब्रह्म भूतम अकल्पनम, अकल्पन हो गया ब्रह्म स्वरूप हो गया, एक सच्चिदानंद घर ही है, इसमें शांत हो गया है, उसको अत्यंत सुख मिलता है, सुखम उत्तम सुखम, वो वहां पर आया था सुखम अत्यंत गंभीर तत्व बीच में वो सुख सुख प्राप्त हो जाता है। युजन एवं सदा इस प्रकार से योग करता हुआ सुखे सुख पूर्व ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। सर्वभूत समात्मान, अब ज्ञान योगी कैसे चलता है,
27 के फल में क्या अंतर है? 27 का भी यही फल बताया, 28 में यही फल बताया, इनमें अंतर क्या है दोनों?
अंतर ये है कि 28 में करने वाले को अत्यंत सुख मिलता है तो वो प्रशांत मन से ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म के संबंध का प्रशांत मन से योगी में सुखम उत्तम प्रीति शांत ब्रह्म प्राप्त हो जाता है उसको। ये प्राप्त होने के बाद क्या स्थिति होती है उसका 28 में, पहले साधन करते करते 27 की श्लोक की सुख होगी, क्योंकि सुख हो गया उसको शांत रज रजोगुण शांत हो गया, आगे रजोगुण नहीं है रजोगुण शांत हो गया, तमोगुण मेट में ही आ गया उसके ऐसे, और ब्रह्म भूतम ब्रह्म ही हूं मैं, अकर्मसम कोई विक्षेप आवरण कुछ नहीं रहा है उसको, ऐसा होता है। ऐसे योग करते हुए अत्यंतम सुख महसूस, अत्यंतम सुख, एक सुख होता है एक अत्यंत सुख होता है। 5वें अध्याय के 20 में है, बाह्य स्पर्शेषु अशक्तात्वा मिन्नति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय महसूस, वो सुख सात्विक होता है पहले आत्मबुद्धि प्रसाद ज्ञान, जो 18वें अध्याय में सात्विक सुख बताया, ऐसे सुख सुख मिलता है। तो वो सुख उस सुख में ब्रह्म योग के साथ में युक्त होने पर अत्यंत सुख है, वो अत्यंत सुख में ही है, यहाँ पर ब्रह्म स्पर्शम अत्यंतम सुख महसूस है, वो अत्यंतिकम इसमें, और जो 20 श्लोक बताए उसमें कोई फल नहीं, अत्यंत बुद्धिग्राही अत्यंत वो एक ही बात है, वहां चिंतन का ध्यान है या अचिंत का ध्यान है, ध्यान के प्रकार में दो है, और कैसे युक्ति से दे बताई वो साकार का सुगुण का ध्यान है, ध्यान में फर्क है, फल में एक ही बात है, सब सुगुण का ध्यान करो, निर्गुण का ध्यान करो, अचिंत ध्यान करो, अंत में एक बात है। अब ज्ञान योग कैसे उत्पन्न कर रहा है, ज्ञान योग की स्थिति बताते हैं। ज्ञान योगी सर्वभूत सुमात्मा, अपने आत्मा को सब में देखता है, अपने शरीर में ही नहीं, सर्वभूत सुमात्मा सब प्राणियों में अपना स्वरूप है, सर्वभूतान जी आत्मनी और अपने में संपूर्ण प्राणी है, आत्मभूत में ऐसा है योग युक्त आत्मा देखता सर्वत्र सुंदर है, सब जगह समय एक परमात्मा है, अपना आत्मा सब जगह है। ये बताया ज्ञान योग का, भक्तियों का बताते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह मेरे को देगा, परमात्मा को देगा, और सर्वंश मई पश्यति, सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा में है, ऐसे होने के लिए मैं अदृश्य नहीं होता, मेरे लिए वो अदृश्य नहीं होता, ये भक्ति की बात बताई। कर्मियों की बात दूसरी जगह बताइए, कर्मणि अकर्मणि पश्य धर्म, चौथे अध्याय का 18वें श्लोक में यही बात कर्मयोगी में, कर्मणि अकर्मणि पश्य अकर्मी से कर्मी है, कर्मियों की बात जैसे सर्वभूत आत्मान सर्वभूता आत्मनि यो माम पश्य सर्वदा सर्वदा मई पश्यति, ऐसे कर्म में अकर्म अकर्म में कर्म, ये तीन श्लोक बड़े विचित्र तीनों योगों का
आपकी कर्मण्य कर्म ये
प्रसिद्ध
को इनके साथ मिलाने
की
खोज तो आपकी
कहीं ऐसा नहीं, टीका में किसी टीका में ये बात मैंने देखी नहीं, हमारे अच्छी लगी है ये टीका लिखाते समय हुई, ऐसे वर्षों से मैं गीता पर विवेचन करता हूँ, व्याख्यान देता हूँ, परंतु टीका लिखाते समय ये बात विशेष अस्तम हुई, कई बातें ज्ञान हुआ संजय ने लिखी, लिखते समय बहुत गीता हुआ, कई बातों में ज्ञान हुआ, हुआ नहीं हो रहा है अभी, अब भी गीता में विलक्षण विलक्षण बातें दिखती है, आज तो मन में ऐसा उछाल आया कि ऋषियों ने कितनी मेहनत की है, जिसमें सनातन सिद्धांत के ऋषियों ने जो विचार किया है आत्मा का अनात्मा का मन बुद्धि का, इतना हरेक किसी ने नहीं किया होगा ऐसा विचार है, इतना करने पर भी गीता उनसे विलक्षण बात बताती ऐसी मन मारी जाती, और ये तो मैंने पहले भी कहा है गीता उस समय लिखी थी, आज अगर गीता लिखे तो हमारी बहुत विलक्षण गीता होगी, वैसे नहीं होगी पहले से, ये बात गीता अब कहते हैं कि सर्वभूतों में से जो आत्मा है उसकी एक होती है भजासन करता है, वो 30वें श्लोक की तरह 29वीं तरह सुखम आय दिवा दुखम वर्षा वर्षा योगी मई वर्ष आज सरसा वर्षा योगी शुक्रवार बहुत विलक्षण बात हो रही है, आज 3 बजे आ जाता है ये तो सर्वथा वर्तमानों की सहयोगी मई वर्ष से सर्वथा वर्तमानों की न सब भूयो भी जाए थे सरसा वर्तमान तो आ गया, तो इसमें बहुत सुबह बातें हमारी बहुत अच्छी हुई। अब इनसे कहते हैं परम योगी बताते हैं सर्वसर्व सहयोगी वो मेरे में ही रहता है, सर्वभूत सब लगे सर्वसा काम करता हुआ चलता फिरता उठता भजन स्मरण जप करता हुआ ध्यान करता हुआ न करता हुआ समाधि में खाता पीता सोचा सर्वथा वर्तमानों में वो मेरे में ही बढ़ता है, मेरे साथ जा ही नहीं सकता, ये महिमा। अब कहते हैं आत्मोपम्य सर्वस्व शरीर में जैसे किसी अंग में पीड़ा न हो सब में शांति मिले, इस तरह से किसी में किंचित मात्र में पीड़ा न हो सबको सुख मिले, ऐसा जो देखता है योग मेरे में परम योगी माना गया, मैं परम योगी मानता हूं, ये परम योगी की बात बताई। अब इसने चलाओ दूसरी बात, लोग कैसे गीता चलाओ गीता कौन समझता है, हाँ एक प्रकरण हुआ पूरा, अब पूरे पूरा हो गया तो ये 23 लोगों का था बता दिया। नारायण 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 सज्जन हो तन परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहते हो सुगम सीधा रास्ता है, हे नाथ हे प्रभो हे प्रभो हरिया बंदे मानसु करिए कूक पुकार, जैसे डाकुओं में फंस जाए कोई बंदी मान हो जाए वो पूछता है कैसे छुड़ाओ नहीं छुड़ाओ, ऐसे संसार से घबरा कर हे नाथ पुकारो। ये बहुत सरल मार्ग है, हर एक कर सकता है, पापी से पापी, पुण्यात्मा विद्वान, मूर्ख से मूर्ख, सभी कर सकते हैं। उस परमात्मा तत्व को पुकारो, ये बात बहुत बढ़िया। और कहो कि हे नाथ आपको भूलो नहीं, वो सगुण करो चाहे निर्गुण, इसमें कोई सिद्ध नहीं है। जिसकी निर्गुण की उपासना है वो सब जगह परमात्मा है, पर मुझे प्रार्थना सगुण से ही होती है, निर्गुण से प्रार्थना ही नहीं होती। निर्गुण में प्रार्थना करने वाला कौन किससे करे, तो प्रार्थना करने में इतना भेद रहता है। तो हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, और उसकी अगड़ी हो गए, इससे जितनी सुगुणता से प्राप्ति होती है इतनी साधनों से गलती नहीं होती। साधन बहुत बताए शास्त्रों में, पर सब साधनों से तेज है। जैसे माँ को बुलाना हो तो बालक माँ माँ करे तो माँ सुन लेती है, आती है, तो घबराहट जाए रोने लगे, रोना भी ऐसा हो श्वास ऊंचा हो घटे तो माँ दौड़ कर आ जाती पट उसी दम। ये ऐसे जो संसार घबरा कर रोने लग जाए, कितना पढ़ा लिखा है, अपढ़ है, किस वर्ण का है, किस आश्रम का है, ये हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है, ये क्या है, यहूदी है पारसी है, कैसा ही बच्चा कोई नहीं हो, मेले में भरा हुआ, कादे में भरा हुआ, रो पड़ता है, जो जो माँ के सब काम छूट जाते हैं, माँ के सब काम छूट जाते हैं और माँ को सब तंग करते हैं। ध्यान देना भक्ति की बात बता दो, गीता जी से बात समाप्त करिए, सुनिए, स्थगित करिए, भाव गीता के आएंगे भाई दूध लावे कहां से। ज्यादा बच्चा रोता है तो जो बड़े बड़े आदमी, स्त्री के सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, नर्दा है, कई है, और वो काम कर रही है, आवश्यक काम है घर का, अरे बच्चा रो पड़ा तो सब कहते बच्चे लो रो पड़ो, कहते मैं काम है, अरे आ रहे तेरे भाषने लगे यार, बच्चा रोता है सब पक्ष में, अरे बच्चा काम कुछ नहीं करता, केवल तंग करता है, खर्च करता है, अरे काम कुछ नहीं करता, पर सब बच्चे के पक्ष में है, माँ काम निंदा करती है पक्ष में, कोई नहीं, देवर है ना, जेठ है ना, पति है ना, ससुर है ना, सास है, नंद है, कोई उसी पक्ष में नहीं।